पृष्ठ संख्या 13। संविधान निर्माण का दौर और अंबेडकर। फरवरी और मई 1928 में कांग्रेस पार्टी ने संपूर्ण दलों का एक सम्मेलन किया, जिस सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में संविधान का मसविदा तैयार करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया। यह संविधान निर्माण की दिशा में प्रथम कदम था। संविधान निर्माण के इसी दौर में हिंदू मुस्लिम दरार को भी कम करने की कोशिश की गई, किंतु हिंदू मुस्लिम एकता प्रयासों में दलितों के हितों का बलिदान कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में धारा सभाओं में दलितों के आरक्षण संबंधी कोई सुझाव नहीं थे। कमेटी ने दलितों के आरक्षण के प्रश्न पर कहा कि विशेष चुनाव क्षेत्र और सीटों के आरक्षण की बात अपरिपक्व और नुकसानदेह है, इसीलिए दलितों के नामांकन का भी विरोध किया गया था। कमेटी की राय थी कि बालिग मताधिकार से दलितों का स्तर स्वतः बढ़ेगा और उनकी राजनैतिक हैसियत भी बढ़ेगी। रिपोर्ट के इस अंश से डॉक्टर अंबेडकर उत्तेजित हुए। उन्होंने साइमन कमीशन के समक्ष दलितों के आरक्षण संबंधी प्रकरण को उठाया। साइमन कमीशन ने भी जवाब में कहा कि नेहरू रिपोर्ट कोई सर्वस्वीकृत दस्तावेज नहीं है। अंबेडकर साहब ने नेहरू रिपोर्ट की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि यह रिपोर्ट उच्च जाति के सामाजिक वर्चस्व को ताकतवर बनाने और ब्राह्मणवादी व्यवस्था को संजीवनी देने के लिए तैयार की गई है। उन्होंने नेहरू रिपोर्ट द्वारा मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में रहने वाले हिंदुओं को मुस्लिम बहुमत की दया पर जीवन निर्वहन करने के लिए छोड़ने की प्रवृत्ति को देश के भविष्य के लिए खतरनाक बताया। उन्होंने उन क्षेत्रों के अल्पमत हिंदुओं के लिए भी पृथक निर्वाचन की मांग की। नेहरू रिपोर्ट में संघीय राज्यों को मुसलमानों को शक्तियां दिए जाने का भी उन्होंने खुलकर विरोध किया। नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन के बीच कोई समन्वय न होने पर अंग्रेज सरकार ने 1930 में भारतीय जनता की मांग के संदर्भ में एक नए संविधान का मसौदा तैयार करने के उद्देश्य से लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में 89 सदस्य थे, जिसमें से 16 ब्रिटेन के, 3 मान्यता प्राप्त दलों के प्रतिनिधि थे। 53 भारतीय दल के प्रतिनिधि थे, जो विभिन्न दलों और समूहों का प्रतिनिधित्व करते थे। 20 भारतीय राजाओं के प्रतिनिधि थे। इसके साथ ही दलित समूहों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राव बहादुर श्रीनिवास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गए हुए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि अछूतों की गैर जातीय हिंदू अथवा प्रोटेस्टेंट हिंदू के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पृश्यों का हिंदुओं से अलग अस्तित्व है। वे वस्तुतः गुलाम और दलित की दयनीय हालत में जीवन जी रहे हैं। एक नेहरू रिपोर्ट, पृष्ठ संख्या 59। पृष्ठ संख्या 14। हिंदू लोग तो उनके अधिकारों का अपहरण करने के लिए ही उन्हें अपना अंग घोषित करते हैं। वे लीग ऑफ नेशंस में अस्पृश्यों के सवाल को उठाना चाहते हैं। उन्होंने तीव्र स्वर में भारत में ब्रिटिश राज्य के तौर तरीकों की भी निंदा की। उनका प्रश्न था, क्या अंग्रेज साम्राज्यशाही ने छुआछूत को खत्म करने के लिए कोई पग बढ़ाया? ब्रिटिश राज के 150 वर्षों में दलितों के ऊपर होने वाले घोर जुल्म में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने डोमिनियन स्टेटस दिए जाने के लिए भारतीय जनता के स्वीकृति की शर्त दोहराई। इस सम्मेलन ने अपने कार्य संचालन को अंजाम देने के लिए कुछ उपसमितियां गठित की। इसमें अल्पसंख्यक उपसमिति में डॉक्टर अंबेडकर मनोनीत हुए। उन्होंने इस समिति में दलितों को वोट की राजनीति के हिसाब से एक अलग वर्ग के रूप में स्वीकार करने की पैरवी की। उन्होंने कहा, जब तक दलितों की मांगे न्यायोचित ढंग से स्वीकार नहीं कर ली जाती, तब तक हम किसी स्वशासन वाले संविधान के पक्ष में अपनी राय नहीं दे सकते। उन्होंने दलितों के समान अधिकार और स्वतंत्र रहन सहन की गारंटी चाही। दलितों का यथोचित प्रतिनिधित्व धारा सभा, कैबिनेट और सरकारी नौकरियों में मांगा। इधर महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 1931 में एक तात्कालिक समझौता हुआ। गांधी जी ने तत्काल सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। उनके साथ कांग्रेस के प्रतिनिधि रूप में श्रीमती सरोजनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय भी लंदन गए। सम्मेलन दोबारा 7 सितंबर 1931 को हुआ। इस सम्मेलन में अल्पसंख्यक उपसमिति और संघीय ढांचा उपसमिति के दिए गए सुझावों की समीक्षा करनी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों की ओर से अल्पसंख्यक समिति को एक ज्ञापन दिया, जिसमें इन वर्गों के लिए पृथक मताधिकार की पैरवी की गई थी तथा धारा सभाओं में उनके विशेष प्रतिनिधित्व का उल्लेख किया गया था। मुसलमानों के मुख्य प्रतिनिधियों, ईसाइयों के एक वर्ग तथा एंग्लो इंडियन लोगों ने अंबेडकर के इस ज्ञापन का समर्थन किया। गांधी जी को भड़काने के लिए यह ज्ञापन काफी था। अगस्त 1932 में रामसे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व के लिए एक तात्कालिक योजना की घोषणा कर दी। इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना गया। उस समय के प्रांतीय विधानमंडलों में अल्पसंख्यकों के लिए अलग से सीटें आरक्षित कर दी गईं और उस समय मौजूद विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर लगभग दूनी कर दी गई। बंगाल और पंजाब में मुसलमानों के पूर्ण बहुमत के बावजूद अल्पसंख्यकों के लिए वहां पृथक निर्वाचन क्षेत्र रखे गए। मुसलमानों को जिन प्रांतों में वे अल्पसंख्यक थे, वहां वरीयता की जगह दी गई तथा पंजाब में वहां के अल्पसंख्यक सिख और हिंदुओं को वरीयता का दर्जा दिया गया। इस अवार्ड में दलितों को पृथक मताधिकार देकर प्रथम बार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में स्वीकार किया गया। 20 वर्षों बाद दलितों का आरक्षण स्वतः समाप्त होने का प्रावधान था, लेकिन उनके लिए प्रथम बार चुनाव लड़ने के लिए आरक्षित सीटें निर्धारित की गईं, किंतु उन्हें सामान्य सीटों पर भी चुनाव लड़ने के अधिकार दिए गए। देश के इतिहास में पहली बार दलितों को विशेष राजनैतिक अधिकार मिले, जिससे वे मातृभूमि की सेवा दृढ़तापूर्वक कर सकें। यह डॉक्टर अंबेडकर के अथक श्रम और संघर्ष का सुखकारी परिणाम था। अंबेडकर के शब्दों में, इस अवार्ड से दलितों को दोहरा अधिकार मिला है। प्रथमतः वे सुनिश्चित सीटों की आरक्षित व्यवस्था में अलग से चुनकर जाएंगे। दूसरे, दो वोट का अधिकार एक आरक्षित सीट के लिए, दूसरा अनारक्षित सीट के लिए। पृष्ठ संख्या 15। इस अवार्ड से देश के दलितों में डॉक्टर अंबेडकर का कद काफ़ी ऊंचा हो गया। वे एक इतिहास की उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां हर कोई जंग जीतने वाला सेनापति पहुंचकर गर्व से अपना मस्तक ऊंचा कर लेता है। उन्होंने कहा, पृथक निर्वाचन के अधिकार की मांग से हम हिंदू समाज का कोई अहित नहीं करने वाले हैं। हम तो केवल उन सवर्ण हिंदुओं के ऊपर अपने भाग्य निर्माण की निर्भरता से मुक्ति चाहते हैं। हमारे भाग्य नियंता कुलीन हिंदू न रहें, ऐसी हमारी मांग है। कांग्रेस पार्टी इस पृथक सांप्रदायिक अवार्ड पर अनिश्चय की स्थिति में थी, किंतु गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। उनके अनुसार इस निर्वाचन पद्धति से इस देश का एक-एक गांव आपस में विभाजित होकर बिखर जाएगा। इसे वे दलितों के हित में भी नहीं मानते थे। वे किसी भी तरह अस्पृश्य समाज को सवर्ण हिंदू वर्ग से अलग नहीं होने देना चाहते थे। उनकी समझ थी कि पृथक निर्वाचन से दलित समाज मुख्य समाज की धारा से पृथक हो जाएगा। मार्च 1932 में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के इस निर्णय के खिलाफ अनशन कर देने की चेतावनी लिख भेजी। अंततः उन्होंने सितंबर 1932 में यरवदा जेल में आमरण अनशन भी कर दिया, जिसके चलते प्रसिद्ध पूना समझौता हुआ। इस संबंध में विस्तृत चर्चा आगे के अध्यायों में की जाएगी। अंत में इसी समझौते को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में समाहित किया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव 1937 में होने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस उदारवादी लोगों का जमावड़ा था, जिसका संगठन और प्रभाव देश के सभी हिस्सों में था। देश के सभी वर्गों तक इनका संगठन पहुंचा था। मुसलमानों का बहुमत मुस्लिम लीग के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर ऐसा मानते थे कि दलित समुदायों के लिए ऐसा कोई राजनीतिक संगठन नहीं है जो केवल दलित वर्गों की समस्याओं को उठाए और उनकी समस्याओं से जूझे। ऐसे में अपने वर्ग स्वरूप व विचार का प्रतिनिधित्व करने वाली एक राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए। अभी तक व्यक्तिगत रूप में ब्रिटिश सरकार के सम्मेलनों और उसके द्वारा नियुक्त आयोगों के समक्ष साक्ष्य देने के लिए वे उपस्थित होते रहे। उनकी गतिविधियों का संचालन स्वयंचेता दलित संगठनों के माध्यम से होता था। इसीलिए उन्होंने अगस्त 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का संगठन खड़ा करने की कोशिश की। चूंकि अभी दलितों में पूरी चेतना नहीं थी, इसीलिए प्रारंभ में ही उनका दल इतना शीघ्र राष्ट्रव्यापी नहीं हो सकता था। इसीलिए उनके उक्त संगठन ने मात्र बॉम्बे प्रेसिडेंट में ही चुनाव में भाग लिया। परिगणित जातियों के लिए यहाँ के विधानमंडल में 15 सीटें आरक्षित थीं, उसमें से 13 सीटों पर इनकी पार्टी जीत गई। साथ ही साथ 2 सीटें अनारक्षित क्षेत्रों में भी जीत गई। वे स्वयं बंबई नगर की आरक्षित सीट से लड़े। कांग्रेस ने इनके मुकाबले पी बालू ब्रैकेट में चमार ब्रैकेट क्लोज, जो उस जमाने के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे, को मैदान में उतारा था। कांग्रेस के सारे प्रभाव के बावजूद वहां कांग्रेस की करारी हार हुई। यद्यपि कांग्रेस ने घोषणा कर दी थी कि वह 1937 के चुनाव में इसीलिए उतरी है कि वह अंग्रेजी कुशासन को अंदर से तोड़ सके, किंतु अंबेडकर साहब पूरी निष्ठा के साथ प्रतिनिधि संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। उनकी प्रारंभिक राय केवल दलित वर्गों की ही एक पार्टी खड़ी करने की थी, किंतु बाद में उन्होंने सभी वर्गों को एक साथ करने का प्रयास किया। उनकी राय में लेबर का मत था कि मुख्यतः श्रमिक वर्गों के हितों के लिए संघर्षरत रहने वाला दल, इसीलिए श्रमिक दल में दलित वर्ग स्वतः समाहित है। पृष्ठ संख्या 16। १९३१ में कांग्रेस पार्टी ने कराची सम्मेलन में अपने मार्गदर्शन के लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। कांग्रेस ने भी आम जनता के लिए कुछ बुनियादी सिद्धांतों की वकालत की थी। डॉक्टर अंबेडकर के श्रमिक दल के सिद्धांतों में इन विचारों को स्थान दिया गया। उन्होंने अपने दल को समाजवादी विचारधारा का ध्वजवाहक दल बनाने की कोशिश की। उनका दल मुख्यतः श्रमिक आंदोलनों को संगठित करने में अपनी शक्ति लगाता था। वे निजी स्वामित्व के सिद्धांत के खिलाफ राज्य आधारित अर्थव्यवस्था के हामी होने लगे। इस तरह सार्वजनिक स्वामित्व का समाजवादी क्रांतिकारी सिद्धांत उन्होंने अपनाया, लेकिन संसदीय लोकतंत्रवादी सिद्धांतों को अपना मूल आधार स्वीकार किया। 1937 के चुनाव में देश के 11 राज्यों में से 8 में कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। बंबई प्रेसिडेंसी में डॉक्टर अंबेडकर की आईएलपी मुख्य विरोधी दल की भूमिका में थी। उस समय डॉक्टर अंबेडकर के बंबई विधान परिषद में व्यक्त किए गए उनके सार गर्भित और उत्तेजक विचार सदैव स्मरणीय रहेंगे। उन्होंने टेनेंसी बिल, एंटी स्ट्राइक बिल, कोठी बिल पर सरकार की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने वर्धा की शिक्षा स्कीम का पुरजोर विरोध किया और कहा कि यह सवर्ण हिंदुओं की व्यवस्था की पोषक स्कीम है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था। अंग्रेजी सरकार ने इस युद्ध में भारत के भी साझेदार होने की घोषणा कर दी। फिर भारत में नया राजनैतिक तूफान खड़ा हो गया। कांग्रेस पार्टी ने युद्ध में किसी भी तरह से मदद करने से इनकार कर दिया, किंतु मोहम्मद अली जिन्ना ने कुछ शर्तों के साथ अंग्रेज सरकार का साथ देने की पहल की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से अपील की कि देश में शांति और सुरक्षा का माहौल बनाने की कोशिश हो। अंबेडकर की भी राय थी कि अंग्रेजों की इस मजबूरी का किसी को लाभ उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भारत को ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनकर रहना चाहिए और इस चुनौती का मुकाबला बराबर के हिस्सेदार की तरह करना चाहिए। कांग्रेस की राय थी कि ब्रिटिश सरकार इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुलामी के खिलाफ लोकतंत्र की स्थापना का युद्ध घोषित करे और उस घोषणा में इस बात का उल्लेख हो कि पूरे विश्व से तानाशाही खत्म कर लोकशाही आएगी, जिसका लाभ भारत को भी मिलेगा। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए वायसराय ने दिल्ली में भारत के सभी पक्षों के राजनेताओं से परामर्श किया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, सावरकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर आदि सभी वायसराय से मिले। सभी दलों के नेताओं ने अपने अपने दल की राय को ही वायसराय से कहा। कांग्रेस पार्टी ने युद्ध प्रयासों में किसी तरह अंग्रेजों की मदद से इनकार किया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात की शिकायत की कि पूना समझौते के अनुरूप संविधान काम नहीं कर रहा है। वायसराय ने इस बात की सार्वजनिक घोषणा की कि विश्व युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार संविधान के क्रियान्वयन की फिर से समीक्षा करेगी और उसके बाद इस संविधान में अपेक्षित संशोधन भी किए जाएंगे। किसी भी हालत में अल्पसंख्यकों के हितों की अनदेखी नहीं की जाएगी। ब्रिटिश सरकार कांग्रेस पार्टी के असहयोग नारे से घबराई हुई थी। उसे हर हालत में लीग और भारतीय श्रमिक दल के सहयोग की जरूरत थी, इसीलिए जिन्ना अंबेडकर को लुभाने के लिए सरकार को इस तरह के आश्वासन देने जरूरी थे। उन्होंने युद्ध में सहयोग के लिए सभी दलों की मिलीजुली सलाहकार कमेटी बनाने की भी घोषणा की। पृष्ठ संख्या 17। कांग्रेस पार्टी ने वायसराय की इस घोषणा का जोरदार विरोध किया। कांग्रेस की राय में विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार की किसी प्रकार की मदद से साम्राज्यवादी शक्तियों की ही मदद होगी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी राज्य सरकारों से तत्काल त्यागपत्र देने का निर्देश दिया। डॉक्टर अंबेडकर को भी साथ करने के लिए कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने उनसे बात की। गांधी जी ने भी महादेव देसाई को अपने दूत के रूप में बंबई भेजा। अंबेडकर ने बंबई विधानसभा में कांग्रेस के युद्ध संबंधी प्रस्तावों का विरोध किया। वे कांग्रेस के बढ़ते राजनैतिक एकाधिकार के खिलाफ थे। उन्होंने आरोप लगाया कि एकता, समता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का कांग्रेस द्वारा उल्लंघन किया जा रहा है। प्रशासनिक पदों पर गिनती के लिए भी दलित वर्गों के लोग नहीं हैं। मैं आज़ादी के संघर्ष के बजाय दलित वर्गों की उन्नति को विशेष महत्व देता हूँ। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पार्टी के आदेश को मानकर नवंबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। मुस्लिम लीग ने इसी खुशी में डेलीवरेंस डे मनाने की घोषणा की। इस दिवस में अंबेडकर ने भी अपने को साझेदार बनाया। इन लोगों ने अंग्रेजी सरकार से कांग्रेस मंत्रिमंडलों द्वारा अपने शासित राज्यों में दमन और लूट के मामलों की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करने की मांग की। 1940 में भारत में क्रिप्स मिशन आया था। इस मिशन ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी को विशेष महत्व दिया था। गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया था। ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ रहे राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रभाव से काफ़ी चिंतित थी। इसी मंशा से उक्त मिशन भारत आया था। इसका उद्देश्य भारत में पैदा हुए गतिरोध को दूर करने का था। मिशन ने दलित वर्गों के प्रति जो रुख अपनाया उससे अंबेडकर काफ़ी नाराज हुए। उनके अनुसार क्रिप्स के प्रस्तावों से दलित वर्गों का काफ़ी अहित होगा और ब्राह्मणवादी व्यवस्था मजबूत होगी। उनका आग्रह था कि दलितों को अल्पसंख्यक का दर्जा तो दिया गया किंतु उन्हें वही राजनैतिक प्रशासकीय सुविधाएं दी जाएं जो अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं। उन्होंने बंबई के गवर्नर से क्रिप्स मिशन के व्यवहार की तीव्र भर्त्सना की। अंबेडकर के गुस्से को देखते हुए बंबई के गवर्नर ने वायसराय से संस्तुति की कि अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ले लिया जाए। गवर्नर ने अपनी संस्तुति में अंबेडकर की आर्थिक कठिनाइयों का भी जिक्र किया था। इसके बाद ही 2 जुलाई 1942 को वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में डॉक्टर अंबेडकर 14वें सदस्य के रूप में शामिल किए गए। इसमें से 5 सदस्य यूरोपीय मूल के थे। यह ब्रिटिश भारत का प्रथम अध्याय था कि एक दलित वर्ग के व्यक्ति को वायसराय की एग्जीक्यूटिव में शामिल किया गया। उन्हें दायित्व के रूप में श्रम मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के हाथ में सत्ता की साझेदारी के भाव से ब्रिटिश हुकूमत में श्रम मंत्रालय के प्रभार के साथ एग्जीक्यूटिव की मेंबरी स्वीकार की। उनके लिए महत्व इस बात का नहीं था कि स्वराज मिले। उनकी राय में महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वराज में स्वशासन किनके हाथों में हो। मजदूरों को मजदूरों के हाथ में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी करनी चाहिए। मजदूरों को अपने कार्य का निष्पादन निष्ठापूर्वक करना चाहिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए लामबंद होना चाहिए। जब कभी भी मालिक मजदूर संग्राम होगा, वे मजदूरों की ओर होंगे। सभी कमजोर दलित मजदूर स्वीकार करें कि उनके हितों के संवर्धन के लिए अंबेडकर ने वह जगह स्वीकार की है। दलितों में यह हीन भाव खत्म हो और वह महसूस कर सके कि ऊंचे ओहदे उनके लिए भी बने हैं। पृष्ठ संख्या 18। उन्होंने 1843 में त्रिपक्षीय मजदूर सम्मेलन आयोजित किया। लेबर स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होने लगी। इसमें इस बात के निर्देश प्रसारित किए गए कि उद्योगों के प्रबंध तंत्र तथा मजदूरों की सम्मिलित कमेटियां बने। इन कमेटियों के माध्यम से ही मजदूरों की समस्याओं और कारखानों की प्रबंधकीय व्यवस्था का निस्तारण हो। इस तरह अंबेडकर के मार्गदर्शन में एक नई औद्योगिक संस्कृति की शुरुआत तथा मजदूरों के हितों की सुरक्षा के अभियान की शुरुआत होती है। अप्रैल 1944 में उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मजदूरों को वेतन सहित अवकाश देने का प्रावधान किया गया था। उन्होंने अनिवार्य रूप से पंचाट के सिद्धांत का पालन करने का आग्रह किया। उनकी अध्यक्षता में 1945 में अखिल भारतीय श्रमिक सम्मेलन हुआ। उन्होंने मजदूरों से पूंजीपतियों पर इस बात के लिए भारी दबाव पैदा करने की अपील की कि वे मजदूरों के हित में उनके स्तर को सुधारने के लिए काम करें। एक तरह से डॉक्टर अंबेडकर ने ही भारत में मजदूर आंदोलनों की आधारशिला रखी। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी निर्धारण कानून बनाने पर प्रथम बार जोर दिया। वे हर स्तर पर मजदूरों की समस्याओं के समाधान हेतु संयुक्त कार्यवाही के पक्ष में थे। उनकी राय में कानून की ताकत से ही औद्योगिक शांति स्थापित की जा सकती है। सन 1942 में अगस्त क्रांति के रूप में आज़ादी का बिगुल गांधी जी के नेतृत्व में बजा। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। डॉक्टर अंबेडकर वायसराय की काउंसिल के मेंबर थे। उन्होंने कांग्रेस के इस निर्णायक संघर्ष की कटु आलोचना की। उन्होंने गांधी जी के नेतृत्व को चुनौती दी। उनकी राय में 1942 का संग्राम बेवक्त का लिया गया एक गैर जिम्मेदाराना कार्य है। उनका दृढ़ मत था, यदि विश्व युद्ध में लोकतंत्रवादी शक्तियों की विजय होती है, तो भारत की आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस ने अंबेडकर द्वारा कांग्रेस की निंदा के बारे में कहा। चूंकि अंबेडकर वायसराय काउंसिल के लेबर मेंबर हैं, इसीलिए उनकी राय उसके परिहार स्वरूप ऐसी है। वायसराय काउंसिल ने अपनी बैठक में अगस्त क्रांति को अंग्रेज सरकार के लिए चुनौती माना। मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की ही तरह अंबेडकर ने भी अपने को इस आंदोलन से अलग रखा। इन लोगों की पूरी शक्ति अंग्रेज सरकार को उसके युद्ध तैयारियों में मदद करने में बीती। गांधी जी ने 1945 में 31 दिनों का लंबा उपवास किया। उनके उपवास के प्रति वायसराय का जो बर्ताव था, उसके विरोध में माधव राव, श्री हरि अणे, होमी मोदी और एनआर सरकार ने वायसराय काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया। किंतु डॉक्टर अंबेडकर अपने पद पर बने रहे। इस देश की युवा पीढ़ी 1942 के महासंग्राम के साथ थी। उधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कर लिया। जापानियों की मदद से उन्होंने भी भारत पर आक्रमण कर दिया। देश का संपूर्ण जनमानस अंग्रेजी हुकूमत के दमन चक्र के खिलाफ था। गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के पीछे पूरे देश की इच्छा शक्ति संगठित हो गई थी। ऐसे में डॉक्टर अंबेडकर ने उस आंदोलन का साथ न देकर युवा पीढ़ी से अपने को स्वतः काट लिया। हिंदू महासभाई, साम्यवादी और मुस्लिम लीग के लोग इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए। डॉक्टर अंबेडकर को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ा। जब वे लेबर मेंबर की हैसियत से अहमदाबाद नगर पालिका में गए, तो उस गुस्से का उन्हें मुकाबला करना पड़ा। उन्होंने सिर्फ इतना कहकर छुट्टी पा ली कि यदि हम लोग अंग्रेजों का साथ नहीं देते, तो जापान और जर्मनी की तानाशाह शक्तियाँ इस देश को रौंद डालती।